नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
फरियाद है मसीहा, जवाब दे मुझे। फरियाद है मसीहा, जवाब दे मुझे। मेरी खता
मित्र। प्रभुष्य के सामर्थ्य और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूरक हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन सभी पुराने श्रोताओं का जो प्रतिदिन हमारे साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और अपने पत्रों को हम तक पहुंचाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम नीति वचन की पुस्तक उसके 15 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर में भी रहकर एक साथ आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी सुविधा देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जब हम नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय से अध्ययन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। विशेष करके हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपने अनुग्रह प्रदान कीजिए, ताकि एक एक का जीवन आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। यदि कोई निराश है, परेशान है, बीमार अवस्था में है, चिंताओं में डूबा हुआ है, नौकरी के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, बच्चों के लिए, किसी प्रकार की बीमारी के लिए, हमारी विनती है हर एक को आप अपनी शांति प्रदान करें, उन पर अनुग्रह करें ताकि एक एक जीवन आपके लिए जीता जा सके। इस समय हम इसे प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोताओं, अध्याय 15 में आप अच्छाई और बुराई में परस्पर तुलना को देखेंगे और जीव की भूमिका, फिर मन के कार्यों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जीव के विषय में देखें। जीव, नीति वचन 15 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पद को पढ़ते ही आपका ध्यान नाबाल और अबीगेल पर गया होगा, यदि आप इनके बारे में जानते हैं तब। हमने उनके प्रसंग में अनेक नीति वचन देखे हैं। अबीगेल एक सुंदर स्त्री थी और अच्छी पत्नी भी थी। उसका पति नाबाल धनवान मनुष्य था, परंतु मूर्ख था। एक पुस्तक है ब्यूटी एंड द बीस्ट, अर्थात सुंदरता और पशु, यह नाबाल और अबीगेल पर लिखी गई है। अबीगेल सुंदर थी और उसमें सुंदरता भी थी, और नाबाल एक पशु था। अबीगेल ने जब सुना कि उसके पति नाबाल ने दाऊद को अपमानजनक उत्तर दिया है, जिसने उनके पशु और चरवाहों की सदैव रक्षा की थी, तो उसने तुरंत ही अपने सेवकों से कहा कि वे दाऊद के लिए बहुतायत से भोजन बांधे, और वह दाऊद से भेंट करने निकल पड़ी। उसने दाऊद को दंडवत किया। वह मानती थी कि दाऊद भावी राजा है, और उसने अंगीकार किया कि उसका जीवन परमेश्वर के साथ गठबंधन में है। उसके कोमल उत्तर के कारण दाऊद का क्रोध शांत हो गया था। दूसरी ओर कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है, ये वचन नाबाल के थे। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आप ऐसे अनेक उदाहरण को पाएंगे। जी हाँ, हम देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में प्रभु यीशु ने फरीसियों को कठोर शब्द सुनाए थे, परंतु इसका समय होता है। यीशु के लिए ऐसा करना सही भी था। दूसरी ओर आप देखेंगे कि वह अनुग्रह के भूखे लोगों पर कैसा दयावान था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 11 पद में उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोष नहीं देता, अब पाप मत करना। यह कैसे अनुग्रह के शब्द थे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के वचन में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं। कोमल शब्दों का समय होता है और कठोर शब्दों का भी समय होता है, और आपको किस प्रकार उपयोग करना है इसे भी आपको समझना है। नीति वचन 15 अध्याय के 2 पद में लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्ता उबल आती है। यह भी जीभ ही की भूमिका है। मैं फिर कहता हूं कि जीभ के दुरुपयोग के बारे में धर्मशास्त्र शराब के दुरुपयोग से भी अधिक चर्चा करता है। इसका अर्थ यह न समझे कि हम शराब को अच्छा कह रहे हैं। हम नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों पर उंगली उठाते हैं, परंतु शराबियों को रोगी और सहायता ग्रस्त कहकर स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का वचन शराब को दोष देता है, परंतु उससे कहीं अधिक जीव को दोष देता है। आपकी यह छोटी सी जीव प्रकट करती है कि आप क्या हैं। यह एक खतरनाक अंग है जो छोटे से माचिस के तीली के समान है, जो बड़े से बड़े बंगले और छोटे से छोटे घर को जला सकती है। नीति वचन 15 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। आप आसपास देखकर सोचते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर आपको सदैव देखता है। आपको स्मरण होगा कि मूसा ने जब देखा कि एक मिस्री व्यक्ति इब्री व्यक्ति को मार रहा है, तब उसने अपने चारों ओर देखा कि उसे कोई देखता है या नहीं, और उसने उस मिस्री व्यक्ति को घात किया। वह ऊपर देखना भूल गया था। परमेश्वर के सामने आपका और मेरा जीवन खुली किताब है। यहाँ आपका गुप्त पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। जी हाँ, आज हमारे बहुत सारे जवान भाई बहन अपने जीवन को गलत मार्गों पर लेकर के चल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है, लेकिन वे इस बात को भूल रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें देख रहा है। नीति वचन 15 अध्याय के 4 पद में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। यहाँ पर फिर से जीभ की भूमिका का उल्लेख है। जीभ हमें बड़ी परेशानी में डाल देती है, परंतु हमें परेशानियों से निकाल भी लेती है। जीभ आशीष का कारण होती है और श्राप का भी। नीति वचन 15 के 5 में लिखा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। नीति वचन में उपदेश और शिक्षा को सुनने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वहां लिखा है कि मूर्ख को शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह सच है। आप उसे कह सकते हैं, परंतु उसे समझा नहीं सकते, क्योंकि वह आपकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है। नीति वचन 15 उसके 16 पद में लिखा है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। धर्मी का धन सांसारिक संपत्ति नहीं है, उसका धन है आनंद, शांति, प्रेम, सहानुभूति, सुविधा आदि। ये जीवन के महान खजाने हैं। इसकी तुलना दुष्ट के धन से की गई है, जो दुख ही दुख में रहता है। नीति वचन 15 के 7 पद में लिखा है, बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। यहाँ होठों की बात है, परंतु अभिप्राय वही है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। तब हम पढ़ते हैं नीति वचन 15 के 8 पद में, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। यह मुख्य सिद्धांत है। दुष्ट न तो भलाई कर सकता है और न ही अच्छी बात सोचता है। उसके लिए यह असंभव है। पल भर के लिए पद 26 को देखें, जहां यही विचार व्यक्त किया गया है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। दुष्ट के विचारों से परमेश्वर घृणा करता है, वरन उसके बलिदानों से भी घृणा करता है। इसका कारण है कि वह भीतर और बाहर दोनों ओर से गलत है। उसका हर एक काम गलत है। उसने दीन होकर अपनी भ्रष्ट दशा को स्वीकार करके प्रभु यीशु के पास आना उचित नहीं समझा कि उद्धार को प्राप्त करे। किसी ने कहा है, जो अपने कर्मों को उद्धार का मार्ग समझे वह खोई हुई आत्मा है। यह सच ही है। दुष्ट लोगों के बलिदान से केवल यहोवा घृणा करता है। धर्म आराधना औपचारिकता पूर्ति की परमेश्वर की दृष्टि में कोई कीमत नहीं है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मनुष्य क्यों सोचता है कि वह कुछ करके परमेश्वर के साथ संबंध बना लेगा। आवश्यकता तो इस बात की है कि मन में बदलाव आए। परमेश्वर पहले आंतरिक शोधन करता है, इसके पश्चात बाहरी कार्य को करता है। वह आपके बाहरी रूप में रुचि नहीं रखता। वह चाहता है कि आप अंदर से बदलें, ताकि वह आपके जीवन में आशीषों को दे सके। नीति वचन 15 उसके 9 पद में लिखा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। हमने देखा है कि परमेश्वर दुष्ट के बलिदान और उसके विचारों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब हम देखेंगे कि वह दुष्ट के चाल चलन से भी घृणा करता है, परंतु धार्मिकता की खोजियों से वह प्रेम करता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:30 में हम इसे पाते हैं, और हम मत्ती सुसमाचार में भी पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम नीति वचन 15:10 में आगे पढ़ते हैं, जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। मनुष्य पसंद नहीं करता कि कोई उसे कहे कि वह गलत है। कुछ लोग सम्मति और सुधार को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि वे जैसे हैं वैसे ही वे ठीक हैं। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हृदय के बारे में, मन के बारे में। नीति वचन 15:11 में लिखा है, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। इब्रानियों की पत्री 4:13 में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। परमेश्वर मन के विचारों और कल्पनाओं को भी समझता है। अधोलोक और विनाश लोक जिसे हमने नहीं देखा है, और मनुष्य उसमें विश्वास भी नहीं करता है, परमेश्वर के समक्ष खुले हुए हैं। मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर ही इस अप्रत्यक्ष संसार को अपनी संतान के लिए प्रकट करता है कि उसे जीवन का सच्चा दृष्टिकोण समझ में आ जाए। जो मनुष्य इस जीवन को ही सब कुछ मानता है, उसके सदाचार और प्राथमिकताएं परमेश्वर की संतान से भिन्न होते हैं। ऐसे लोगों से बात करने से पहले आवश्यक है कि हम जीवन के विषय में उनके दृष्टिकोण को समझें कि उनका सोचना क्या है। केवल परमेश्वर ही हमें और उनको अप्रत्यक्ष संसार का ज्ञान प्रदान कर सकता है। 2010 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मानव रूप में अर्थात मानव देह में आए। उसने मृत्यु के द्वार में प्रवेश किया और तीसरे दिन वह फिर मृतकों में से जी उठा और 40 दिन तक अपने शिष्यों को पृथ्वी पर दिखाई देता रहा। इसके पश्चात वह महिमा में लौट गया, परंतु उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दे दिया, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:15 में पाते हैं। उसने प्रतिज्ञा की कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हमें इसका ज्ञान रखना अति आवश्यक है। नीति वचन 15:13 में लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। यह तो सभी जानते हैं कि हंसना, प्रसन्न रहना और आनंदित रहना मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक और जीवनदायक होता है। इसीलिए आज बहुत सारे टीवी चैनल हंसी के कुछ ऐसे गुण दिखाते हैं ताकि लोग हंसे और सुखी रहें। इनसे जीवन को ऐसा विकास प्राप्त होता है जो दुखों और नकारात्मक विचारों से प्राप्त नहीं होता है। मेरे मित्रों, आज हम आगे पढ़ते हैं और देखेंगे नीति वचन 15:14 में, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। वह मानव बुद्धि की नहीं मन की बात पर बल देता है। वह तथ्यों की अपेक्षा आत्मिक विवेक की चर्चा कर रहा है। जैसे किसी ने कहा, शुद्ध बुद्धि इसकी आज बहुत कमी है, अकाल पड़ा हुआ है, इसे हम कहीं पा नहीं सकते हैं। नीति वचन 15:16-17 में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए पशु का मांस खाने से उत्तम है। दानियल का जीवन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वह युवा अवस्था में दास बनाकर बेबीलोन को ले जाया गया था, उसने असामान्य बुद्धि का प्रदर्शन किया। इस कारण उसे बुद्धिमान मनुष्यों के साथ लोक सेवा के प्रशिक्षण हेतु चुना गया था। उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह यहूदियों की परमेश्वर प्रदत्त व्यवस्था से वर्जित भोजन था, अतः उसने केवल शाकाहारी भोजन की याचना की। उसने परमेश्वर के भय के कारण ऐसा चुनाव किया था। वह परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। ओह, परमेश्वर ने इस कारण उसे कैसा सम्मान प्रदान किया। उसने उसे नबूकदनेस्सर का प्रधानमंत्री बनाया। नबूकदनेस्सर पहला संसार का सबसे बड़ा राजा था। मादी फारसियों द्वारा बेबीलोन जीतने के बाद भी परमेश्वर ने दानियल को उस महान साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाया जिसका राजा कुस्रु था। परमेश्वर ने अपने सेवक को प्रतिष्ठित किया। नीतिवचन 15 के 18 पद में लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। यह पद एक से संबंधित है, जिसका व्यवहार अभद्र हो वह झगड़ा मचाता है। यह भी सच है कि परमेश्वर का वचन प्रचार विरोध उत्पन्न करेगा। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु पृथ्वी पर सबसे अधिक विवादास्पद मनुष्य था। जहां भी सत्य की चर्चा की जाए वहां पर विवाद उत्पन्न होता ही है, क्योंकि कुछ लोग सत्य को सुनना पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन एक ऐसा मानक है जो कलीसिया में सच्चे विश्वासी की पहचान करवाता है। एक युवा प्रचारक को अपनी कलीसिया में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वह मेरे पास आया तो मैंने उसे अपने बाल्यकाल का अनुभव सुनाया। जब कभी मैं अंधेरे में जाता जो पेड़ के नीचे से गुजरता तो मुझे दो चीजें दिखती, कहीं चूहे भागते हुए दिखते अपने लालटेन से, तो कहीं पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती। यह प्रकाश का प्रभाव था। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन का प्रचार करते समय आप चूहों को भागते देखेंगे और चिड़ियों को चहचहाते सुनेंगे। हमें स्मरण रखना है कि हम क्रूस की ठोकर को अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त न करें, केवल प्रचार करें। नीतिवचन 15 के 20 पद में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। पिता अपने पुत्र की अच्छाई पर गर्व करता है, परंतु पुत्र यदि परीक्षा में फेल हो जाए तो उसके पिता के मुंह से आप कुछ भी नहीं सुनते हैं। नीतिवचन 15 के 23 में लिखा है, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बात यह नहीं कि आप क्या कहते हैं, परंतु यह कि किस समय कहते हैं। सही समय पर कही गई सही बात काम कर देती है। हम में से अनेक जन स्वीकार करेंगे कि उचित समय पर कहे गए उचित वचनों ने हमारे जीवन को बदल दिया है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। नीतिवचन 15 उसके 26 पद में लिखा है, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। हम देख चुके हैं कि दुष्ट के बलिदान, दुष्ट के विचार, दुष्ट के मार्ग आदि सब परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। उसे अपने कुमार्गों से मन फिराना आवश्यक है। उसे परमेश्वर के निकट आना होगा ताकि उसका जीवन बदल जाए। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में शांति और आनंद पाना चाहते हैं, परंतु अपने उन दुष्ट कर्मों से फिरना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उनसे घृणा करता है। नीतिवचन 15 उसके 29 पद में लिखा हुआ है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। पत्रस भी इसी बात को लिखता है, पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। तब हम नीतिवचन 15 उसके 30 पद में पढ़ते हैं, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। मोटापा घटाने का सबसे उत्तम उपाय है बुरा समाचार सुनो, क्योंकि आप बुरा समाचार सुनेंगे तो आपको झटका लगेगा और आपका मोटापा भी कम होता जाएगा। नीति वचन 15 के 33 पद में जो आखिरी वचन है लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। मेरे मित्रों, मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि वह परमेश्वर से सीखने के लिए दीन बने। हम सबको इस शिक्षा की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग नीति वचन की पुस्तक की कही बातों को मानते हैं या आपने सुना है। आप में से कितने हैं जो दीन बनना चाहते हैं। आज जब हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं तो मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने और सुधरने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और प्रभु के वचन का अनुसरण करें, और मैं निश्चय ही जानता हूं कि आज परमेश्वर मुझे और आपको एक नई जिंदगी देने जा रहा है। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तुझसे बना